आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पांचवें अध्याय का अध्ययन संक्षिप्त में करने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। अभी तक हमने देखा किस प्रकार से शरीर और आत्मा में भेद है, और फिर इस ज्ञान के आधार पर किस प्रकार से हमें भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा कि अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन को शंका हुई कि क्या करना है, कर्म योग करना है या कर्म संन्यास करना है। तो भगवान ने इस विषय में अर्जुन को समझाया कि किस प्रकार से भगवान को समर्पित सभी फलों को, कर्म के फलों को भगवान को समर्पित जब हम करते हैं तो उस कर्मों के कोई फल नहीं बनते हैं, और जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है अर्थात पूर्ण ज्ञान में स्थित है, उसके लिए कोई वैदिक शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य शेष नहीं रहता है। और भगवान ने अंत में बताया चौथे अध्याय में कि ज्ञान जो सभी यज्ञ इत्यादि हम करते हैं उसका अंतिम फल है ज्ञान में स्थित होना। तो इस प्रकार से, और फिर अंतिम श्लोक में, चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने बताया, कंक्लूजन निकाला, तस्मात देयरफॉर तस्मात अज्ञान संभूतम मितस्थम ज्ञान सिनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत। इसलिए है अर्जुन, अभी आप खड़े हो और इस प्रकार से संपूर्ण ज्ञान में स्थित होकर के युद्ध करो। तो अगेन अर्जुन, अभी भी उनको क्लियर नहीं हो रहा है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान उन्हें कर्म करने के लिए कह रहे हैं या कर्म को रोकने के लिए कह रहे हैं। तो ये थीम जो है ये भगवद गीता में पहले छह अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फोर्सिबल, बहुत इम्फेसाइज करके समझाया गया है कि किस तरह से आध्यात्मिक जीवन निष्क्रियता नहीं है, जिसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और ये अध्याय में दोबारा से भगवान जोर देंगे कि किस प्रकार कर्म संन्यास, कर्म को छोड़ देना, कुछ नहीं करना, वो श्रेष्ठ नहीं है, जैसा कि सामान्य रूप से भ्रांत धारणा होती है। संन्यास मतलब क्या समझते हैं लोग? कुछ करना नहीं, संन्यास, सर संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया मतलब सब कुछ करना छोड़ दो, बस
संसार छोड़ देना,
संसार छोड़ देना, संसार में कुछ काम नहीं करना, वो समझते हैं ये संन्यास है। और आध्यात्मिक जीवन का मतलब यही है, यदि हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना है तो हमें कर्म संन्यास करना होगा, हमें सब कार्य छोड़ देने होंगे, यही उनका अंडरस्टैंडिंग है। तो अर्जुन इसी संशय को व्यक्त कर रहे हैं कि जैसा हमने बताया था कि अर्जुन सोच रहे हैं कि ये सब मैं युद्ध करूंगा, इतना सब खून खराबा होगा, मेरे स्वजन मारे जाएंगे और इतना सब पाप होगा, अच्छा है मैं युद्ध नहीं करूं, कुछ नहीं करूं, संन्यास ले लूं, सब काम बंद कर दूं, संन्यास ले लूं, और इस तरह से सब काम रोक देने से मुझे परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये जनरली लोगों की सोच होती है कि भाई अगर इस भौतिक जगत से छुटकारा लेना है बस इस भौतिक जगत को छोड़ दो, जब छोड़ दिया तो छुटकारा हो गया, जब छोड़ दिया तो छुटकारा हो गया। लेकिन ये गलत धारणा है जिसको भगवान बार बार समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, भगवान बार बार उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। नहीं कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुषश्नुते, मात्र कर्मों को ना करने से कर्मों के फलों से मुक्ति नहीं मिलती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक फ्रस्ट्रेट होकर के भौतिक जीवन में और सोचे ठीक है अभी संन्यास ले लेते हैं, तो क्या होगा फिर उसका? उसके हृदय के अंदर जो सब भौतिक इच्छाएं हैं तो वो तो अभी रह गई, वो तो एकदम से ऐसे नहीं जाती हैं, लेकिन उसने अपना कर्म करना, कोई भी कर्म करना छोड़ दिया है। वैसे तो कोई भी कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता, लेकिन आर्टिफिशियली कुछ समय के लिए वो अपने को ऐसे निष्क्रिय या निथिल रास्ता है, सोच सकता है कि मैं बस केवल मनन करूंगा, केवल मेडिटेशन करूंगा, एकांत में जाकर के मेडिटेशन, लेकिन क्या होगा, क्योंकि उसके हृदय के अंदर अभी इच्छाएं तो बाकी हैं, इसलिए वो एकांत में भगवान का ध्यान वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि हृदय के अंदर भी भौतिक इच्छाएं शेष हैं। तो इसलिए दोबारा से प्रेरित होगा फिर उन भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करने में। इसलिए हमने आपको बताया था, कई बार हम देखते हैं कि कोई अध्यात्म कोई तथाकथित साधु होते हैं, लेकिन उनके जब हम जीवन में गहराई में जाते हैं, या कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग बड़ी जघन्य कार्य में लिप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियली, हृदय शुद्ध नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियली उन्होंने संन्यास ले लिया, अर्थात संन्यास का मतलब ये सोच लिया कि संन्यास मतलब कार्य करना बंद कर दो, और हृदय में इच्छाएं हैं, इसलिए फिर वो लोग छुपे छुपे या किसी न किसी तरह से उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो लोग उनको कार्य करना पड़ता है, और अवैध तरीके से कार्य करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिकली तो देव अनाउंस संन्यास, तो इसलिए अवैध तरीके से करते हैं। और इस प्रकार से पूरे संसार में आध्यात्मिक जीवन का मार्ग क्या है ये धूमिल हो जाता है। लोग सोचते हैं ये सब सन्यासी, ये सब साधु, ये सब बाबा एक जैसे हैं, सब बेकार है, लोग सब ऐसे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से आध्यात्मिक जीवन का जो तरीका है उसको सही से समझा नहीं आता। इसलिए भगवान भगवद्गीता में इस भ्रांत धारणा को हटा रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब नहीं है कर्म से विरुक्ति, उसको छोड़ देना, बल्कि कर्मयोग में स्थित होना, कर्म करना लेकिन उसे भगवान से लिंक करना, उसके फलों को, कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करने से वास्तव में व्यक्ति संन्यास लेता है, ना कि कर्म को छोड़ देने से। कर्म के फलों को भगवान को समर्पित करने से संन्यास होता है। क्यों? सत्न्यास। संन्यास का मतलब क्या होता है? संन्यास की डेफिनेशन है सत्न्यास। सत मतलब परम सत्य, परम सत्य के लिए सेक्रीफाइस करना, उसे संन्यास कहते हैं, सत्न्यास। तो अभी हम जो कार्य कर रहे हैं सामान्य रूप से अपने भौतिक जगत में, वो किसके किस प्रेरणा से कर रहे हैं, किस हेतु के लिए कर रहे हैं? भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं सब लोग कार्य, सामान्य रूप से कार्य तो भगवान की, भगवान तो बस केवल शब्द है बोलने के लिए, बाकी भगवान क्या और भक्ति क्या है कोई किसी को पता नहीं, सब अपने किस लिए करते हैं, सब
चीजों को पाने के लिए,
सब केवल अपने शरीर को कंफर्टेबल बनाने के लिए करते हैं। शरीर के अंदर इंक्लूडेड है हमारा माइंड भी, अपनी सिचुएशन को हम कंफर्टेबल बनाने के लिए, जिसे इंद्रिय भोग कहते हैं, उसके लिए सब कार्य करते हैं, इजंट इट? सो दैट इज अ सेंट्रल पॉइंट। तो लेकिन संन्यास मतलब अभी हम कार्य करेंगे भगवान की संतुष्टि के लिए, इसे संन्यास कहते हैं। तो इसलिए यह अध्याय का प्रारंभ भी अर्जुन के पुनः वैसे ही प्रश्न से होता है जैसा कि उसने तीसरे अध्याय के प्रारंभ में किया था। तो अर्जुन कहते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी यश्रेय तयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्याग करने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्योंकि अर्जुन को क्या लगा कि जब भगवान ने इससे पहले के अध्याय में क्या बताया, ज्ञान योग, कि ज्ञान में स्थित हो, ज्ञान में स्थित हो, और सभी जो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ मतलब कर्म कर रहे हैं जो भगवान को समर्पित होता है उसे यज्ञ कहते हैं। तो अलग अलग भगवान ने यज्ञ बताए, तो वो सब यज्ञ का भी अंतिम परिणाम क्या होता है, ज्ञान में स्थित होना। और इस प्रकार से जो ज्ञान में स्थित हो जाता है वो सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो अगेन अर्जुन को यही लगा कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली क्या है, ज्ञान में स्थित होना है। क्या ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि, दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, वो भगवान पहले बता चुके हैं। तो ठीक है, अब मैं समझ लिया हूं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, अब मैं ज्ञान में स्थित हो गया हूं, तो अभी मुझे क्या जरूरत है लड़ाई करने की, ये युद्ध मैं क्यों करूं, अभी तो मैं ज्ञान में स्थित हूं तो मैं संन्यास ले सकता हूं। लेकिन फिर भगवान ने जब अंत में कंक्लूजन निकाला, फिर क्या बोला, इसीलिए देयरफॉर अभी आप ज्ञान में स्थित होकर लड़ाई करो। सो अर्जुन गॉट कंफ्यूज्ड, करना क्या है, ज्ञान में स्थित होना है कि ज्ञान में ये युद्ध करना है, दोनों को ही इज थिंकिंग एज कॉन्ट्रडिक्टरी। तो इसलिए ये अर्जुन का प्रश्न है, क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो ये तात्पर्य बड़ा सुंदर है प्रभुपाद जी का, हम इसको जरा देखें। भगवद गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। शुष्क चिंतन, चिंतन मनन परम सत्ता के ऊपर, जो निराकार है, निर्विशेष है, ऐसी कोई एक सत्ता है उसके ऊपर हम चिंतन ध्यान करने कोशिश करें, उससे श्रेष्ठ है हम भक्तिमय कार्य करें, भगवान की सेवा के लिए कार्य करें, अपने कार्य के फलों को भगवान को समर्पित करें। ये इस अध्याय का सार है, ये इस अध्याय का सार है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि भगवद गीता में तो कर्म कर्म प्रधान, कर्म बताया गया, कर्म करने को बताया गया, लेकिन कर्म योग करने के लिए बताया गया। केवल कर्म करने, गधा भी कर्म करता है, तो कर्म करने को बताया तो जरूरत नहीं थी बताने की, वो तो सब कर्म कर ही रहे हैं। लेकिन भगवान ने एक विशेष रूप से कर्म करने की कला सिखाई, जिसे कर्म योग कहते हैं। ऐसा कार्य करना जिसको करने से कार्य तो होता है लेकिन उसका रिएक्शन, उसका प्रतिफल कोई नहीं बनता है, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र में हम और नहीं फंसते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझना। जो भी हम कार्य करते हैं अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए, शरीर की देखभाल के लिए, मात्र इस मंशा से कि शरीर को हष्टपुष्ट रखना है, इस दृष्टि से हम जो भी कार्य करते हैं उसका एक भौतिक कर्म फल बनता है, एक रिएक्शन बनता है, एक प्रतिफल बनता है, अच्छा या बुरा। शास्त्र के अनुसार किया तो पुण्य कर्म कहलाता है, उसका पुण्य फल मिलता है, यानी कि भौतिक लाभ उससे मिलेगा। और अगर हम शास्त्र के विपरीत कार्य करेंगे, आदेशों के विपरीत करेंगे, तो उससे क्या होगा? पाप, उसे पाप कहेंगे और उससे बुरा प्रतिफल बनेगा। लेकिन प्रतिफल बनेगा, और प्रतिफल बनने का मतलब है जब फल मिला तो चखना पड़ेगा ना। अभी आपको फल दिया गया है चखने के लिए, तो जीवा होगी तभी तो चख सकते हैं, जीवा नहीं तो कैसे चखेंगे। तो अगर प्रकृति के नियम के अनुसार हमें अपने कर्म के फलों को चखना होगा तो उसके लिए क्या जरूरत होगी? फिर से जन्म लेना जरूरत होगा, शरीर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये फलों को चखना के लिए इंद्रिय, शरीर चाहिए, इसलिए कर्म बंधन चलता रहेगा। तो इसीलिए कर्म करने की जो कला भगवद गीता में बताई है, क्योंकि कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज सिंपली इमेजिनेशन कि हम कर्म के बिना रह सकते हैं, केवल बस ध्यान करके रह सकते हैं, क्योंकि वो जीव का स्वाभाविक लक्षण नहीं है। आत्मा का लक्षण है क्रिया, आत्मा की आध्यात्मिक स्तर पर हमारे जो हम आत्मा हैं उनकी भी आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, इसलिए कर्म ना करना ये कोई ऑप्शन है ही नहीं। कुछ टाइम के लिए टेम्परेली आर्टिफिशियली वी कैन स्टॉप, रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, इसीलिए वो ऑप्शन नहीं है। तो फिर भगवद गीता में बताया गया है कि हमारी जो शुद्ध अवस्था है उसमें कैसे, किस तरह से हम कार्य करें कि कार्य तो हो लेकिन उसका कोई प्रतिफल न बने, उसे कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। योग है कर्म करने की कला, आर्ट ऑफ एक्टिंग, कर्म करने की कला, कैसे कर्म किया जाए जिससे कर्म बंधन नहीं हो बल्कि वो कर्म हमें भगवत धाम ले जा सके, उसे कर्म योग कहते हैं। ओके, तो इस अध्याय में इस तरह से बताया गया है, भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उनके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया। सबसे पहले हमने क्या देखा दूसरे अध्याय में, कि आत्मा और शरीर का भेद बताया गया। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ। फिर हमने इसके बाद में क्या पढ़ा कि कैसे हम भक्ति योग के द्वारा, या जिसे बुद्धि योग कहते हैं, हम कैसे इस ज्ञान में स्थित होकर के हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम किस प्रकार से भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना प्रारंभ करें, तो हमने पढ़ा। तृतीय अध्याय में बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। तीसरे अध्याय में हम देखा कि जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है, जिससे अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे कि कोई कर्तव्य नहीं होता है, इसका मतलब उसे कुछ नहीं करना होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कोई कर्तव्य नहीं करना होता है? जब एक बच्चा होता है छोटा, तो उसको स्कूल में जबरदस्ती भेजना पड़ता है और उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है, आपको इतना घंटा ये पढ़ना है, इतना घंटा ये पढ़ना है, इतना घंटा ये पढ़ना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन जब मैच्योर हो जाता है आदमी, तो फिर उसको इस प्रकार से नियम में बांध के नहीं रखा, सुबह 8 बजे स्कूल में पहुंचना है, ये करना है, वो करना है। अभी उसके अपना कॉलेज में पहुंच गया, उसके बाद देन इज मैच्योर, नाउ यू कैन डू हिमसेल्फ। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है, इसका मतलब ये नहीं कर्तव्य नहीं होता है, वो कुछ करना बंद करता है काम। इसका मतलब उसके वेदों के द्वारा उसको बताने की जरूरत नहीं है कि अभी आप ये करो, ये करो, ये करो। वो प्रेमवश भगवान से प्रेम स्थापित होने के कारण हमेशा भगवान की इच्छा के अनुसार सतत कार्य करता ही है, भगवान की सेवा कार्य करता ही है। इसलिए उसके लिए कोई कर्तव्य बताने की जरूरत नहीं है। ही ऑलरेडी नोज बाई डायरेक्टली बाई लिंक्ड, बिकॉज ही इज लिंक्ड विद गॉड, इज विद कृष्ण, सो ही नोज क्या करना है क्या नहीं। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म, भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन गॉट कंफ्यूज, भगवान का कोई मंशा नहीं था कि उनको कंफ्यूज करें, लेकिन अर्जुन कंफ्यूज हो गए भ्रांत धारणा के कारण। अर्जुन यह समझते हैं कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। तो अर्जुन ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनको मायावादी सन्यासी कहते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि सन्यास का अर्थ है कार्य का सन्यास, कर्म सन्यास, कर्म छोड़ दो करना, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अर्जुन। तो इसके माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं अर्जुन कि ये गलत धारणा है, ये जो सन्यास है मायावादी सन्यास कि भाई हम तो सब कर्म त्याग देंगे, ये गलत है, दैट इज रॉन्ग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। कर्म और ज्ञान दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज लगती हैं अर्जुन को, कि जहां ज्ञान है वहां कर्म की जरूरत नहीं है, और जहां कर्म है तो वो ज्ञान के बिना का स्तर हुआ, क्योंकि अगर ज्ञान हो गया तो फिर कर्म की जरूरत नहीं है, दैट इज द थिंकिंग। इज इट गेटिंग क्लियर? ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। जब हम संपूर्ण ज्ञान में स्थित होकर, क्या ज्ञान में, कि हम कृष्णदास हैं, हम कृष्ण सेवक हैं, हमारा एकमात्र हेतु है कृष्ण की संतुष्ट करना, इस ज्ञान में स्थित होकर के जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाए उसका कोई बंधन, कर्म बंधन नहीं लगता है, इसलिए वो अकर्म जैसा हुआ, कर्म न करने जैसा हुआ, क्योंकि उसका कर्म का कोई बंधन नहीं हुआ। ये अर्जुन ये पॉइंट नहीं समझ, और ये पहले जो 5 अध्याय हैं इसमें यही पॉइंट को बार बार इम्फेसाइज किया। अतएव वह पूछता है कि यह सब प्रकार के कर्म त्याग दें या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। तो इस प्रकार से अभी भगवान दोबारा से अगेन ही विल अगेन इलेबोरेट और इसको विस्तार से बताएंगे इस बात को। तो भगवान क्या कहते हैं, संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। दिस इज कृष्णाज डिसीजन कि कर्म त्याग करने से, सब प्रकार कर्म को बस छोड़ देने से अच्छा है भक्ति में कर्म करना, भगवान की सेवा के लिए कर्म करना अच्छा है कर्म को छोड़ देने से। हालांकि दोनों ही मुक्ति के पथ पर कार्य किए जाते हैं, लेकिन भक्ति में कर्म करना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे तो देर इज ए रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन, पतन होने का संभावना बन रहती है। क्यों क्यों बन रहती है पतन होने की संभावना? इच्छा भी हृदय के अंदर से भौतिक इच्छाएं साफ नहीं हुई हैं। मात्र कर्म छोड़ देने से भौतिक इच्छाएं तो साफ नहीं होती ना। डायबिटीज का कोई पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाए, बोले अभी मीठा नहीं खा सकते हो, तो अभी उसने मीठा खाना बंद कर दिया, तो क्या मीठा खाने की इच्छा बंद हो गई? इच्छा चल रहेगी। तो इसलिए रिस्क है कि कभी भी वेग भारी हो जाएगा तो अरे भाड़ में गया डॉक्टर, कोई बात नहीं मर जाएंगे, एक एक्स्ट्रा इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, ऐसा होता है ना। तो सिमिलरली जो व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर रहा और आर्टिफिशियली कर्म को छोड़ दिया है तो रिस्क क्या है? फॉल डाउन। इसका मैं उदाहरण भी दिया था, जैसे जो इस प्रकार से ज्ञानी पुरुष हैं, जैसे विश्वामित्र जैसे ज्ञानी भी तपस्वी भी, वो भी योग साधना करते हैं लेकिन क्योंकि भक्ति नहीं करते हैं इसीलिए पतन हो जाता है, क्योंकि वो रिस्क की पोजिशन है, क्योंकि हृदय करने से इच्छा नहीं गई है, थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ सभी वो जो अंतःकरण के अंदर जो इच्छाएं सुसुप्त अवस्था में हैं वो सब निकल जाती हैं। लेकिन भगवान की सेवा करने से वो हृदय शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, वो सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, भोग करने की इच्छाएं, क्यों? क्योंकि उनका स्थान शुद्ध भगवान की सेवा करने की शुद्ध इच्छा ले लेती है। क्योंकि इच्छा होना वो तो जीव का स्वभाव है, जीव कभी भी इच्छा रिक्त नहीं हो सकता, नहीं तो जड़ पदार्थ बन जाएगा, डेड मैटर बन जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए केवल हमें अशुद्ध इच्छाओं को बदलना है, रिप्लेस करना है शुद्ध इच्छाओं से, और उसका एकमात्र मार्ग है भगवान की सेवा। इज इट क्लियर? फिर भगवान कहते हैं, गेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो सन्यास की परिभाषा भगवान यहां दे रहे हैं, हु इज सन्यास? नॉट जस्ट वन हु इज वियरिंग सेफ्रॉन इज सन्यासी, नॉट जस्ट वन जो केवल भिक्षा मांगता है वो सन्यासी, ये सब सन्यास के आधारभूत लक्षण नहीं है। सन्यास का मुख्य लक्षण है क्या? जो कर्म फलों से अनासक्त होता है वो सन्यासी है। दिस इज द रूट डेफिनेशन ऑफ सन्यास। इसी बात को भगवान छठे अध्याय में बताते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्ने न च अक्रिया। भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो कोई अगर गृहस्थ भी है लेकिन यदि वो अपने कर्म के फलों में तनिक भी आसक्त नहीं है तो ही इज ऑल्सो सन्यासी। ऐसे उदाहरण देखते हैं अपने आचार्यों के जीवन में, जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर महान आचार्य प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, उनके पिताजी और उनके गुरु भी थे, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन उनका पूरा उनका जो जो जीवन था वो केवल कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित था। गृहस्थ आश्रम के जो भी कार्य थे उसका हेतु था कृष्ण संतुष्टि, इसलिए वो आचार्य महान आचार्य हैं। तो इसलिए ये जो ड्रेस है दैट इज इमटीरियल, ड्रेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्या है? चेतना, हार्ट, हृदय, वो महत्वपूर्ण है, वो एसेंस है। फिर वस्त्र और इत्यादि बाह्य है, वो स्थान के अनुसार कुछ भी हो सकता है, यानी कोई गृहस्थ भी हो सकता है, कोई सन्यासी भी हो सकता है, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन मुख्य है, सन्यास का मुख्य लक्षण है कि कर्म के फलों में आसक्त नहीं होना चाहिए। अब ये हमको देखना है कि हम अपने कर्म के फलों में कितने आसक्त हैं तो हम पता लगाते हैं हम कितने सन्यास में किस कहाँ हैं, सन्यासी हैं कि हम कितने भोगी हैं, कितने परसेंट सन्यासी हैं, ये हम पता लगाते हैं कि हम अपने कर्म के फलों में कितने आ सकते हैं। हम जब कर्म करते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है फलों के प्रति, और जब फल मिलता है तो हम उसके फलों का क्या करते हैं? सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फलों को अपने लिए अपने परिवारजनों के इंद्रिय भोग के लगाते हैं या उसको कृष्ण के इंद्रिय भोग के लगाते हैं, कृष्ण की संतुष्टि के लगाते हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। यह है नैष्कर्म्यम। यहां भगवान का डिक्लेरेशन है कि कि कौन व्यक्ति कर्म करते हुए नहीं बनेगा, जो भक्ति भाव से कर्म करेगा। भक्ति भाव से कर्म करना मतलब केवल ऐसा नहीं कि बस मन में सोच लें बस हम तो जो भी करते हैं बस भगवान को याद करके करते हैं, लेकिन जब फल मिलता है तब खा लेते हैं अपने आप, ऐसा नहीं चलेगा। केवल मानसिक स्तर से ही भक्ति नहीं होती, भक्ति हर स्तर पे होती है। हर इंद्रिय से भक्ति होनी चाहिए, केवल मान लेने से भक्ति नहीं होती। हम जो भी करते हैं मान लेते हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं अभी एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ, हम बस मान लेते हैं कि हम जो एंजॉय कर रहे हैं भगवान के लिए एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर भगवान है, जब मैं एंजॉय कर रहा हूं मतलब भगवान एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब ढोंग नहीं चलेगा, ये सब भगवान को हम लोग मूर्ख नहीं बना सकते। केवल नाम दे देने से भक्ति नहीं होती कि बस हम तो सब भगवान के लिए करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली हम अपने हृदय में झांक के देखना पड़ेगा कि हम कितना अपने कंफर्ट्स, अपने इंद्रिय भोग के लिए प्रयास कर रहे हैं और कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि। तो हम भगवान के महान भक्तों के जीवन से देख सकते हैं उदाहरण क्या है भक्ति का मतलब। तो आप देखिए, जैसे बलि महाराज, अभी बलि महाराज असुर परिवार में जन्म लिए और इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं को भी स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया और राज्य ले लिया। इस प्रकार से पूरे इस पृथ्वी जगत तो था ही उनका, स्वर्गलोक को भी जीत लिए, सब पूरे पूरे ब्रह्मांड को जीत लिए। फिर जब वामन रूप में भगवान उनसे 3 कदम जमीन मांगते हैं, तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो समझ गए कि ये वामन का रूप धर के विष्णु आए हैं तुमको छलने के लिए, 3 पग जमीन मांग के तुमसे पूरा ब्रह्मांड ले लेंगे। तो उन्होंने उनको सचेत किया, इसकी बात मत मानना। लेकिन बलि महाराज हालांकि असुर परिवार में जन्म हुए थे, लिए थे, लेकिन महान भक्त थे, प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। प्रहलाद महाराज महान भक्त थे, वो भी असुर परिवार में जन्म लिए थे, हिरण्यकश्यपु के परिवार में, और उनके पौत्र थे, तो ये भी महान भक्त थे। तो उन्होंने जब विचार किया कि अगर विष्णु मुझसे लेने आए हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, यदि भगवान विष्णु की मैं सेवा कुछ कर पाऊं तो बहुत अच्छी बात है। तो भगवान विष्णु ने 2 कदम में तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, बोले अभी 3रा कदम कहां रखूं। तो बड़ी दुविधा हो गई, क्या हो गया, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का राजा था, अभी कुछ भी नहीं रहा। तो बोले अभी यहां सिर पे रख दीजिए। बोले नहीं, अभी सिर भी तो उसके अंदर आ गया, आप भी तो ब्रह्मांड के अंदर आ गए, अभी 3रा कदम आप देने में यू आर, आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए, इसलिए बंदी बना लिया। तो बलि महाराज कितने अनासक्त थे भगवान की सेवा के लिए। आप सोचिए, हम लोग को छोटी मोटी जमीन होती है, थोड़ा बहुत पैसा होता है, उससे कितने अटैच हो जाते हैं हम लोग। यहां बलि महाराज पूरा ब्रह्मांड के इतने शक्तिशाली, और ऐसे दान दे दिया क्योंकि भगवान मांग रहे हैं, ले जाइए। ये सब प्रैक्टिकल उदाहरण हैं जो हमको देखने चाहिए। हमसे अगर भगवान मांगे कुछ, हमसे कोई भगवान सेवा के लिए कोई ऐसा करो, तो हमको कितनी दिक्कत होती है ना। अरे अरे अरे, ये कैसे हो। लेकिन ये महान भक्तों के उदाहरण से हम सीखते हैं कि किसे कहते हैं भक्ति, किसे कहते हैं भक्ति। तो हम जितने भी महान भक्त हुए हैं उनके उदाहरण से हम देखें कि सेक्रीफाइस, त्याग, जिसे संन्यास का त्याग, त्याग मतलब किस चीज का संन्यास, सब कुछ तो भगवान का है, तो फिर हम संन्यास किसे करेंगे, त्याग किसे करेंगे। तो त्याग हम करते हैं अपनी भोग करने की इच्छाओं का, दैट इज संन्यास। अपनी भोग करने की इच्छाओं का त्याग करना ही वो, दैट इज संन्यास। तो इस प्रकार से जो कार्य करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध हो गया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वही आदमी इंद्रिय भोग को छोड़ सकता है जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया है। इसलिए भक्त मतलब स्वाभाविक रूप से इंद्रियों पर तो संयम ही है ही, वो नहीं तो कैसे भक्त बनेगा। भगवान की इंद्रियों का भोग कौन करेगा, भगवान की सेवा कौन करेगा जिसको अपनी इंद्रियों पर वश नहीं है, वो तो अपनी इंद्रियों की ही सेवा करेगा, इंद्रियों का गुलाम रहेगा। इसलिए भक्त का मतलब ही है ऑटोमेटिकली ही आत्मसंयमी, वो योगी है, आत्मसंयमी है, तपस्वी है, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है एक भक्त के अंदर। और वही व्यक्ति सबों का प्रिय होता है, एक भक्त ही सबका प्रिय होता है, सबका हितैषी भक्ति होता है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है। बाकी सब जो है इस भौतिक संसार में जो भी अपने शरीर से प्रेम रखते हैं, यानी देहात बुद्धि में है, वो बाह्य रूप से लग सकते हैं हमारे हितैषी, लेकिन हितैषी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ है। वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, अपना इंद्रिय भोग चाहते हैं। वो हमारी तब तक ही हमारे प्रिय हैं जब तक आप उनके इंद्रिय भोग में सहायता कर रहे हैं। जहां आप उनके इंद्रिय भोग में सहायता नहीं किए, रुकावट बने, आप उनके दुश्मन हो जाएंगे। सब लोग अपने इस भौतिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं, हमारे बड़े नियर डियर रिलेटिव्स भी, मित्र भी, समय आता है जब हमारे दुश्मन बन जाते हैं, बड़े दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? अभी हम उनका इंद्रिय भोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो ये संसार इस प्रकार चलता है। लेकिन जो भक्त है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर कार्य करता है, इसलिए वास्तव में वही हमारा परम हितैषी होता है, वही हमें भगवत धाम ले जाने के लिए ही उसका एकमात्र हेतु यही होता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इस ज्ञान में स्थित कर्म करता है, उसे कोई भी कर्मों का फलों का बंधन नहीं लगता है। कुर्वन अपि न लिप्यते, कर्म करता वह भी उसमें लिप्त नहीं होता है। ही रिमेंस अलूफ, उसके कर्म फलों में बंधता नहीं है। फिर इसका एक उदाहरण देते हैं भगवान। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पत्र पद्म पत्रम इवाम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो ये उदाहरण है, कमल पत्र के ऊपर पानी डालें तो भीगता नहीं है। उसी प्रकार से एक भक्त, क्योंकि केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, इसलिए कार्य करता हुआ भी उसके फलों में लिप्त नहीं होता, उससे बनता नहीं है, कर्म फल में बनता नहीं है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। जो लोग मन की शांति चाहते हैं, जो सब चाहते हैं, ऐसे भगवद गीता में अनेक श्लोक हैं जिसमें भगवान शांति सूत्र बताए हैं। इस अध्याय में भगवान दो बार शांति का सूत्र बताएंगे। एक ही सूत्र है, अलग अलग सूत्र नहीं, एक ही सूत्र है, लेकिन अलग अलग एंगल से भगवान बता रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंद जाता है। शांति कौन प्राप्त करेगा? जो अपने कर्म के फलों में आसक्त नहीं है और जो अपने कर्म के फलों को स्वइच्छा से भगवान की सेवा में लगा देता है, वो शांति प्राप्त करेगा। और जो व्यक्ति कर्म करता है फलों को भोगने की कामना से, वो कभी शांत नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति है, जॉब करता है या कोई भी काम करता है, काम करना है, उससे फिर पैसा मिलेगा, पैसे से मैं ये करूंगा, फिर उससे ये भोग की स्थिति प्राप्त करूंगा, फिर उससे कार लूंगा, फिर उससे ऐसा होगा, फिर बच्चे का यहाँ सिलेक्शन होगा, उसके लिए इतना पैसा डोनेशन दूंगा, फिर बच्चा जब बड़ा होगा तो उससे मेरे को ये लाभ होगा, बच्चे का नाम होगा तो मेरा नाम होगा, और फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं। अभी जब इतनी सारी योजनाएं बनाएंगे हम, तो इस भौतिक जगत का सिद्धांत है कि योजनाएं हम बनाते हैं, लेकिन वो सफल होंगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कितना भी ताकतवर आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना ही पैसे वाला हो, कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, कितना ही बुद्धिमान हो, क्या वो कोई गारंटी दे सकता है कि मेरी योजनाएं सफल होंगी 100%? क्यों नहीं दे सकता? आप बताएंगे? हाँ आप बता रहे हैं, बताइए। हाँ आपने करा, लेकिन वो मतलब या लेकिन क्यों नहीं वो गारंटी दे सकता? आपने नहीं कर रहा है तो वो अपने लिए सिद्ध क्यों नहीं हो सकता? वो यस हाँ जानता नहीं है, लेकिन वो प्लानिंग कर रहा है ना भविष्य के लिए कि मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, ऐसा करूंगा तो फिर ये होगा, फिर क्या क्या प्रॉब्लम है? क्यों? यस
भौतिक जगत में जितना भी मिलता है वो हमारे संचित कर्मों के मुताबिक मिलता है, हमारे कर्मों के मुताबिक मिलता है, जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं उसके मुताबिक भगवान देते हैं। तो उसके जो इच्छाएं होती है, जो प्लानिंग होती है, वो भगवान हमारे कर्मों के, अगर कर्मों के मुताबिक मिलती है तो प्रकृति को एक आदेश देते हैं और उसी के मुताबिक।
यस, सो अल्टीमेटली हम लोग बहुत छोटे से मकोड़े से भी कम हैं, चीटे कुछ नहीं हम लोग, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। गारंटी कौन दे सकता है? जिसको कोई और फैक्टर इन्फ्लुएंस ना करे वो गारंटी दे सकता है। जो आदमी खुद बंधा हुआ है वो क्या गारंटी दे? तो हम सब बहुत तुच्छ हैं, हम सब बहुत छोटे हैं। हम प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन कर्म बंधन है, प्रकृति के नियम है और अपना भगवान का अपना नियम है और ये समय है, काल है, इतने सारी चीजें हैं। हमारा कर्मफल तो है, दूसरे कर्मफल भी है जो हमारे साथ में इन्वॉल्व है। आपने विवाह किया, आपका कर्मफल एक प्रकार का है सुख भोगने का, लेकिन आपका जो पार्टनर है उसका कर्मफल है दुख भोगने का। तो आप उसके कर्मफल के अनुसार भी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि नाउ यू आर पार्टनर। कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार, कितने सारे फैक्टर्स हैं जो हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसीलिए हम प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि हमको पता होता है गारंटी है नहीं, तो इसलिए क्या होता है, चिंताएं होती हैं। क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, स्वाभाविक है चिंता होना, क्योंकि हमको पता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हमारी इच्छा है कि ऐसा हो, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अंदर से पता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, तो चिंताएं होती हैं, हमेशा चिंता है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या होगा। और जब चिंता मन में रहेंगे तो शांति कहाँ आएगी, शांति नहीं होगी। और फिर जब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य हो जाता है तो हर्ष मिलता है क्षणिक, कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए आता है फिर वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अंततः जो भी भौतिक सुख मिलेगा वो कुछ समय के लिए रहेगा। तो फिर हमें उसका डर लगने लगता है कि ये सुख कितने दिन रहने वाला है मेरे साथ, कितने दिन का है, कब चले जाएगा, कब चले आएगा, तो उसका सोच करके चिंता होने लगती है, करेक्ट। और फिर एक दिन जब वो चला जाता है तब फिर शोक, चला गया। तो इसलिए आप देखिए, मनुष्य के लिए, जीव के लिए ये जो भोग करने का जो रास्ता है शुरू से लेकर अंत तक केवल चिंताओं का ही सर्टिफिकेट है। क्लियरली विद ऑल लॉजिक वी कैन अंडरस्टैंड कि चिंताग्रस्त होना ही उसने अपने आप लिख दिया है, साइन कर दिया है, आई वॉन्ट टू बी इन एंग्जाइटीज, ये फॉर्मूला है चिंताग्रस्त रहने का। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों में आ सकते हैं वो चिंताग्रस्त होने के लिए बाध्य है, अपने आप उसने अपने ऊपर ये ले लिया है चिंताएं। फिर हम बोलते हैं पता नहीं मुझे चिंता क्यों होती है, खुद अपने ऊपर चिंता ले लेते हैं और फिर बोलते हैं चिंता क्यों होती है, क्योंकि आपने जो मार्ग चुना है वेरी क्लियरली वी कैन अंडरस्टैंड कि वो चिंता युक्त मार्ग है। इसके विपरीत जो व्यक्ति का जीवन केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए है उसे किस बात की चिंता, बताइए उसे क्या चिंता हो सकती है? कृष्ण तो सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, हम उनकी सेवा करना चाहें वो सर्वोपरि हैं, उनको कोई चिंता नहीं हो सकती, उनको कोई एक्सटर्नल और कोई फैक्टर नहीं है कि उनको डिस्टर्ब कर सके। जो भी वो चाहते हैं स्वराट, इच्छा करते हैं होगा ही होगा, उसमें कोई और रुकावट का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं और कि उनसे कंपटीशन करे, ऐसा कोई है ही नहीं। तो इसलिए भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के मार्ग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ ही नहीं सकता है। अगर हम चाहते हैं भगवान की सेवा करना सिंसियरली, कृष्णा विल एम्पावर, यस यू सर्व मी। और जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो फिर भगवान जब संतुष्ट होते हैं हमसे तब वो हमें संतुष्ट करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, मीन्स ऑटोमेटिकली। तो इसलिए भगवान को संतुष्ट करने से जो संतुष्टि मिले उसके रास्ते में कोई चिंता कारण नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर क्या कहा गया है, युक्ता, युक्ता मीन्स जो भगवान से लिंक्ड है, इसे कहते हैं इस तरह से लिंक्ड, जो भगवान की इंद्रिय संतुष्टि को ही एकमात्र जीवन का कार्य बनाए और उसे कोई चिंता नहीं, और उसे कोई कार्य नहीं है उसे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, वो अपने कर्म फलों को त्याग देता है, भगवान को समर्पित करता है, भोग नहीं करता है। शांतिम आपनोति, वो शांति प्राप्त करता है, कैसी शांति, नैष्टिकीम अनअडल्टरेटेड, ऐसी शांति, उसमें कोई अल्टरेशन। तो इतना सिंपल है ये फॉर्मूला, लेकिन हमारे लिए मुश्किल क्यों होती, क्योंकि हम लोग जानते हैं सुन रहे हैं लेकिन फिर भी इंद्रिय भोग में इतने एडिक्टेड हैं कि उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि यही हमारे दुख का कारण हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं। वीकनेस ऑफ हार्ट, श्रद्धा की कमी कि भगवान की सेवा करने से ये भी छूट जाएगा जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, पता नहीं सेवा में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा हमको डर लगता है, श्रद्धा नहीं होती है। जैसे एक बंदर तो एक छोटी सी एक कांच की शीशी में हाथ देता है, अंदर कुछ खाने को होता है, और मुट्ठी बंद कर देता है। अभी मुट्ठी बंद करता है तो अभी वो हाथ तो निकलेगा नहीं, लेकिन उसे मुट्ठी भी नहीं छोड़नी है और हाथ भी निकालना है, तो दोनों चीज़ साथ में नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार से हम लोग यही प्रयास करते रहते हैं कि किसी ना किस तरह से भौतिक भोग भी नहीं छूटे और ये हाथ, ये कर्म बंधन से मुक्ति भी मिल जाए, तो ये दोनों चीज़ साथ में तो नहीं हो सकती। हमको ये नहीं पता होता है कि छोड़ देंगे तो इससे बहुत सुंदर चीज़ मिलने वाली है, वो श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक हम ये इंद्रिय भोग नहीं छोड़ेंगे। ये बात भगवान आगे बताएंगे। इस प्रकार से सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, जो इस प्रकार से देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ, अपनी इंद्रियों का दास नहीं बनता, भक्ति योग में अपने को लगा करके इंद्रियों का स्वामी बनता है, अर्थात भगवान की सेवा में उनको लगाता है, और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, सबके कर्म के फलों को भगवान की सेवा में लगाता है, वो सुखपूर्वक रहता है। फिर भगवान एक और महत्वपूर्ण श्लोक यहां कह रहे हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है, यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हम सब जो अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं इंद्रिय भोग की लालसा से प्रेरित होकर के, वो सब कार्य के पीछे जीव का, आत्मा का योगदान कितना है और प्रकृति के वश में होकर के कितना होता है। तो एक आदमी है तो वो जैसे पागल आदमी है, तो पागल है तो पागलपन की वजह से वो नहीं जानता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर पागलपन छाया हुआ है, अभी उसके हाथ में नहीं है, ही इज हेल्पलेस। उसी प्रकार से वर्तमान में हमारी स्थिति भी ऐसे ही है, वी आर हेल्पलेस। हम इसमें प्रकृति के गुणों में इतने फंसे हुए हैं कि गुण के अनुसार कार्य करने में के लिए हम बद्ध हो जाते हैं, हम बद्ध हैं, स्वतंत्र नहीं है। जैसे एक आदमी, हमने बताया था आपको, उदाहरण दिया था, जिसने समुद्र में छलांग लगा दी है, अभी जब तक छलांग नहीं लगाई तब तक उसके हाथ में था, लेकिन जब उसने छलांग लगा दी एक बार, जब पांच समुद्र में गिर गया, अभी वो हेल्पलेस हो गया। अभी जो सागर की लहरें हैं वो उसकी मर्सी पर निर्भर हो गया, जब सागर की लहरें ऊपर उसको उठाएंगी तो वो बाहर आएगा, और जब डुबोएंगी तो डूबेगा, ही इज हेल्पलेस नाउ। लेकिन वो हेल्पलेस कंडीशन क्रिएट किसने की? वो खुद उसने की, उसने जंप किया, सागर ने जाकर के उसको नहीं पकड़ा, सागर ने जाकर उसको नहीं पकड़ा, उसने खुद छलांग लगाई। लेकिन एक बार छलांग लगा दी तो अभी वो सागर के नियमों में फंस गया, अभी फिर वो विवश हो गया। तो ऐसे ही हमारी स्थिति, हम सब लोग स्व इच्छा से, भोग करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन एक बार जब प्रविष्ट हो जाते हैं तब फिर बात हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाती है, फिर प्रकृति के नियम के अनुसार हम बन जाते हैं और नियम के अनुसार चक्र में चलते रहते हैं। इस मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर वो थोड़ी स्वतंत्र इच्छा शक्ति वापस मिलती है, जिसका सदुपयोग करके कम से कम हम हाथ ऊपर कर सकते हैं, हेल्प मी। समुद्र में कहीं डूब रहा हो तो वो केवल थोड़े समय के लिए, जब समुद्र की लहरें अपने आप उसे कुछ समय के लिए बाहर निकालें तो वो चिल्ला सकता है, मदद करो प्लीज, हेल्प मी, और दूसरे क्षण हो सकता है फिर वापस अंदर चले जाए, बेहोश हो जाए, फिर चिल्ला नहीं सकता, फिर थोड़े समय के लिए अपने आप बाहर आएगा और फिर चिल्ला सकता है। तो हम केवल ऐसे ही, थोड़ी सी हमको स्वतंत्रता है कि हम कम से कम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, हृदय से चाहते हुए कि भगवान मैं फंस गया हूँ, प्लीज़ अभी मुझे निकालिए, मैं वास्तव में बाहर आना चाहता हूँ, मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प मी। इतनी हम कर सकते हैं, इतना ही वो करना है। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये ऐसी ही पुकार है, जैसे एक हेल्पलेस एक चाइल्ड छोटा सा बच्चा जैसे अपनी माँ के लिए पुकारता है हेल्पलेस कंडीशन में, उसका और कोई सहारा नहीं है, वो इतना छोटा है, इतना इतना विवश है कि वो माँ की मर्जी पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से, इसलिए वो केवल चिल्ला सकता है। ऐसे ही हम लोग इस भावना से जब भगवान को पुकारते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से तो भगवान सुनते हैं। अभी इसकी अकल ठिकाने आ रही है, अभी मैं इसकी मदद करूंगा, अभी इसको समुद्र से निकालूंगा, अभी भगवान फिर हाथ पकड़ करके हमको निकालते। लेकिन जब तक हम हृदय से चिल्लाएंगे नहीं तब तक भगवान क्यों मदद करेंगे। हम अपनी इच्छा से आए हैं तो भुगतो, जब तुम्हारी इच्छा होगी बाहर आने की तब मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सुन करके, शास्त्र को सुन करके और खुद अपने एक्सपीरियंस जो हम देख रहे हैं इस भौतिक जगत में, उससे इस निष्कर्ष पे आना है कि यस, भगवद गीता में जो कहा है मेरी कंडीशन ऐसी है, आई एम हेल्पलेस, और मुझे इस समुद्र से बाहर निकलना है और मैं हेल्पलेस हूं, इसलिए मुझे हृदय से पुकारना चाहिए, जितनी भी मेरे अंदर क्षमता है उतने पुकारना चाहिए। इसलिए सभी भगवदगीता के अध्ययन का, इस पूरी संस्था का एसेंस है टू चैंट हरे कृष्णा इन दिस हेल्पलेस मूड, यही सार है। जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, जितने भी मंदिर का निर्माण मंदिर का कार्य है, उसका अल्टीमेट एसेंस क्या है? एसेंस इज टू चैंट हरे कृष्णा इन दिस हेल्पलेस मूड। आई नंद तनु जकिंग करम पतिताम माम विषमे भवाम, हे भगवान मैं कैसे विवश होकर किसी ना किस तरह से भवसागर में गिर गया हूं, अभी मैं जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अभी और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, वो पहले खुद अपनी मदद करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन जब देखा ऐसे नहीं संभव है, सो इनकम्प्लीट हेल्पलेस मूड शी प्रेड टू कृष्ण, भगवान प्लीज अपनी मदद, तब भगवान ने मदद की। तो उसी प्रकार से जब तक हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे इस प्रकार से और भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं जागृत होगी कि भगवान बचा सकते हैं, तब तक हम ऐसे हेल्पलेस मूड में पुकार नहीं सकते और तब तक हमारी आध्यात्मिक प्रगति शुरू नहीं होगी, बहुत स्लो होगी। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन सबको हो ही रहा है, उसमें याद नहीं फ्रस्ट्रेशन होना है, वो सबको हो ही रहा है, लेकिन दिमाग में नहीं घुस रहा है। दिमाग में तब घुसता है जब साधु संघ में आकर के सुनते हैं, साथ साथ यहाँ सुनेंगे और फिर कल को जाकर के ऑफिस में और जॉब में देखेंगे, हाँ जो सुना था वही हो रहा है, करेक्ट, अभी समझ में आया, पहले हो रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब सुना और खुद अनुभव किया तो समझ में आ रहा है। तो इसलिए रेगुलर हियरिंग होना चाहिए जिससे सब समझ में आए। फिर भगवान बताते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापम, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उसकी वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर देता है। तो हमने पहले बताया श्लोक में, भगवान बता रहे हैं पहले श्लोक में कि जीव अपने आप में रिस्पॉन्सिबल मतलब पूरी तरह से नहीं है, हेल्पलेस है इस समय वो, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, आई एम ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल, खुद जीव अपने अज्ञान में आवृत होकर के ये सब करता है। सो अल्टीमेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो हम कार्य सब कर रहे हैं उसके पीछे भगवान की सैंक्शन है और प्रकृति का फैसिलिटेशन है। ज्ञान तु तद ज्ञानम येषा नाशित आत्मनम तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाश यदि तत्परा, तो यह ज्ञान ही कारण है हमारे सभी मुश्किलों का, मिजरीज का। क्या ज्ञान? फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का, या हमको पता नहीं कि कितने ग्रह हैं और कितने नक्षत्र हैं, ये ज्ञान से कोई फायदा नहीं होने वाला। मीन्स कुछ भौतिक जगत में कुछ फायदा हो, लेकिन जहां तक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रश्न है उसे इसमें कोई फायदा नहीं। तो ये ज्ञान कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, ये और इस प्रकार से इस ज्ञान में स्थित होकर भगवान की सेवा करना, ये जो ज्ञान है इसमें जो स्थित होगा वो परम सत्य को देख पाएगा, समझ पाएगा, उनके साथ संबंध स्थापित कर पाएगा। फिर भगवान इस प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो बताते हैं, ये हमारा लक्ष्य आइडियल एम, हम हमको यहां पहुंचना है, ये हमारे लक्ष्य होने चाहिए पता लगाने के लिए कि हम किस स्तर पे हैं। तो भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखियो ने एवते आद्यंतवंत कौनते नते शुरमते बुदा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान यानी ज्ञान में जो स्थित है, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये जो संस्पर्शजा भोग, ये जो इंद्रिय भोग है, भगवान क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? हरे कृष्णा। यस, यू आर फीलिंग स्लीपी? तो भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो इंद्रिय भोग से मिलने वाला सुख है, सुख नहीं है, ये दुख है, ये दुख का सोर्स है, ये दुख का कारण है। अब हम सोच सकते हैं कि पूरा जगत कितनी भ्रांत धारणा में है, हम सब लोग किस सपने में जी रहे हैं, हम लोग सोच सकते हैं। क्या सब लोग ये नहीं सोचते कि इंद्रिय भोग सुख का कारण है? क्या सब लोग नहीं सोचते कि मॉल्स में जाओ और खूब चाइनीज डिश खाओ और तंदूर खाओ और क्या क्या नहीं खाओ और नए नए कपड़े पहनो और इस तरह से एंजॉय करो, यही एंजॉयमेंट है? कौन नहीं सोचता? ये पूरा जगत यही सोचता है। समाज में नाम हो, इज्जत हो, पैसा हो, बस देन आई विल बी हैप्पी। कौन नहीं सोचता है? सब तो यही सोचते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण, दिस इज इल्यूजन, ये गलत है, ये भ्रम है। तो हम कहां जी रहे हैं? हम सपने में जी रहे हैं सब लोग, हम सब लोग अज्ञानता में जी रहे हैं। तो फिर हम दुखी नहीं होंगे तो क्या होगा? तो भगवान क्लियरली डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो इंद्रिय भोग है, ये सुख का नहीं, बिल्कुल उल्टा है, ये दुख का कारण होता है। दुख का, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, यानी कि वो इंद्रिय भोग के लिए ललायित नहीं होता, उसका जीवन बिल्कुल अलग होता है। इसलिए जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, सामान्य जनता की समझ में उनकी गतिविधियां नहीं आती, उनको पागल जैसे लगते हैं वो लोग। अरे इतना पढ़ा इसने, ये सब किया, सब छोड़ दिया, इससे बड़ा मूर्ख क्या कौन होगा? अरे लोग इतने इतनी मेहनत करते हैं, इतना मुश्किल से मिलता है, और इसको मिला और इसने छोड़ दिया, तेरे तो भाग्य में ही नहीं है सुखी रहना। तेरे भाग्य में ही नहीं है, यू आर फूल। कोसते हैं, कोसते हैं उसको, उनकी समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं आ सकता कैसे? अलग बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। जो लोग इसको जिसको सुख का मार्ग सोच रहे हैं, जो योगी है, जो ज्ञानी है, वो जानता है ये तो दुख का मार्ग है, दे आर फूल्स। तो योगी के लिए पूरा संसार मूर्ख है और पूरे संसार के लिए वो योगी मूर्ख है, तो दोनों की बनती नहीं, दोनों बिल्कुल अपोजिट है, 36 का आंकड़ा है दोनों। इसलिए गतिविधियां अलग अलग हैं, सोच अलग अलग है, रहने का स्थान, रहने का सब कुछ अलग अलग है। इसलिए भक्त लोग जाते हैं संसार में केवल उनको बताने के लिए, उसमें से जो लोग तैयार हैं उनको लेने के लिए, बाकी उनको और कुछ उससे लेना देना नहीं होता है। इसलिए जब हमारे मूवमेंट अमेरिका में शुरू हुआ, तो धीरे धीरे नौजवान लोग प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को सुनकर के और शास्त्र पढ़ करके जीवन समर्पित करने लगे भगवान की सेवा में। तो उनके वहां के जो जनता थी, उनके पेरेंट्स थे, उन लोगों ने आरोप लगाया कि ये प्रभुपाद जी जो हैं, ये ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं सबका, इनको बहका रहे हैं, और केस कर दिया कि लोग ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं सब, ये सब फुसा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया ये क्या है, ये सब परिवार को छोड़ना है और भगवान की सेवा करना है, क्यों हमारी सेवा करो, भगवान की सेवा क्यों करते हो? हमने तुम्हें पैदा किया है, भगवान ने पैदा किया है, हमने पैदा किया, हमारी सेवा करो। हमको ये नहीं पता कि अल्टीमेटली सबको भगवान ने पैदा किया है, तुम्हें भगवान की सेवा करनी चाहिए और तुम्हें प्रेरित करना चाहिए कि बच्चा भगवान की सेवा करे। तुम बच्चे को भगवान की सेवा से रोक रहे हो, खुद तो कर ही नहीं रहे, भगवान के बच्चे को भी नहीं करने दे रहे हो। तो हमने पैदा, तुमने पैदा नहीं किया है, पैदा तो आत्मा कभी पैदा नहीं होता है, और जो ये शरीर है वही तो भगवान का दिया हुआ है। माँ बाप बनाते हैं बच्चे का शरीर, माँ बाप को पता भी नहीं होता बच्चे शरीर कैसे बनता है, करेक्ट? उनको तो कुछ नहीं पता होता कैसे बनता है, तो अगर वो बनाते होते तो उनको पता होना चाहिए ना, कुछ नहीं पता होता। एक्चुअली सब भगवान ही करते हैं, तो भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है। अगर कोई भगवान की सेवा, सबका अंतिम लक्ष्य तो यही है, पूरी तरह से सब केवल भगवान की शरण, भगवान की सेवा में रहे, और कोई कार्य नहीं है, किसी का और कोई कार्य नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है तो ये तो महान सौभाग्य की बात है, यदि कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है, उसमें सबकी सेवा निहित है। He has reached the ultimate perfection. सबसे बड़ी माँ बाप की सेवा हो गई। यदि कोई, यदि किसी का बच्चा भगवान की सेवा के लिए अपना भौतिक इंद्रिय सुख सब छोड़ करके केवल भगवान की ही सेवा में पूरी तरह से लग गया, सबसे बड़ी माँ बाप की सेवा हो गई। क्यों? क्योंकि माँ बाप को परम आध्यात्मिक लाभ होगा उस बच्चे के ऐसा करने से। अभी उनका जन्म देना सार्थक होगा कि हमने जन्म दिया, उसका कुछ क्रेडिट मिल जाएगा, जाने अनजाने में हो जाएगा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए ब्रेन वॉशिंग का मुकदमा चला दिया। तो बहुत दिन तक चला, बहुत हाहुल्ला हुआ प्रेस के अंदर और सब। फॉर्चुनेटली अंत में कोर्ट ने अपना निष्कर्ष दिया कि दिस इज ए बोनाफाइड रिलीजन, दिस इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस कैन नॉट बी टेकन बैक। ये तो सबका वो है, अधिकार है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नहीं तो फिर आध्यात्मिक का कोई मतलब नहीं रहेगा, रिलीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन मतलब ये शुद्ध भक्ति, ये समझना मुश्किल है थोड़ा। सामान्य रूप से जो सामान्य भक्ति, सामान्य भक्ति मतलब जो बिजनेस है कि बस भगवान के पास जाओ, दो मिनट आरती करो, मांगो भगवान नौकरी लग जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान मुझे दे दो, ये भक्ति करना अच्छा है। मैक्सिमम लोगों के समय में ये आती है, या तो ये है कि भगवान वगैरह कुछ नहीं है, बेकार है, कर्म करो, अपना मेहनत करो, काम करो, गधे की तरह मजूरी करो, अपना आप कमाओ, जाते तो इस प्लेटफॉर्म पर है, और फिर थोड़े से जो ऊपर है, अरे भगवान है भाई, भगवान, भगवान के बिना कुछ नहीं होने वाला, इसलिए जाओ मेहनत भी करो, भगवान से मांगो। नेक्स्ट ये है, उनके लिए भक्ति, भक्ति यही है, इसके ऊपर कोई भक्ति नहीं समझते, पर ये भक्ति नहीं है, ये तो पुण्य कर्म है, दिस इज सुकृति, अच्छा है नास्तिक से, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब हम हैं ही कृष्ण की सेवा के लिए, हमारा कोई अपना सेपरेट लाइफ नहीं है, सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, वी आर मीन सिंपली टू सर्व कृष्ण, और उसी में हमारा परम हित है, दैट्स इट। ये है भगवद गीता का एसेंस, ये है इस्कॉन का प्रीचिंग, ये है एसेंस प्रभुपाद जी का जो देने आए, क्योंकि ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी, इसी से ही आत्मा संतुष्ट हो सकती है संपूर्ण रूप से। जब जीव इस स्तर पर पहुंच जाता है कि मैं केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही बना हूं, मेरा और कोई कार्य नहीं है, मेरा और कोई हेतु नहीं, देन ही फील्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड, परफेक्टली सेटिस्फाइड। इस प्लेटफॉर्म से नीचे और किसी भी प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मीन्स डिफिकल्ट नहीं भी है, बड़ा आसान है। वैसे ही सब सेवा कर ही रहे ना, कोई ऐसा आदमी है जो सेवा नहीं कर रहा है? एंजॉयमेंट के नाम पर हम लोग सेवा ही कर रहे हैं, अंत में हम सब अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। हम सोचते हैं हाँ मैं अपनी इंद्रियों से एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन अंत में इंद्रिय के हम गुलाम बन जाते हैं और इंद्रिय हमको डिक्टेट करती है, और उसकी वजह से हम नहीं चाहते हैं, हमारा बुरा हो रहा होता है, तकलीफ हो रही होती है, फिर भी इंद्रिय हमको आदेश देती है करो, है ना। जीवा, पेट भर गया है, पेट खराब हो गया है, लेकिन फिर भी जीवा आदेश देती है, कैंसर हो गया, लंग कैंसर, एक और सिगरेट पियो। अरे भाई लंग कैंसर डॉक्टर बना के, नहीं एक और पियो, तो हम गुलाम हो गए ना, और क्या हो गए, सेवा ही कर रहे हैं ना इंद्रिय, तो हम सब सेवा ही कर रहे हैं। तो केवल डिसीजन ये लेना है कि इंद्रियों की सेवा करनी है या भगवान की सेवा करनी है, बस इतना ही, यही ऑप्शन है, दो ऑप्शन, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, क्योंकि हम भोक्ता नहीं है, इसलिए हम भोग, इंडिपेंडेंट भोक्ता नहीं है, हमारा भोग, हमारा संतुष्टि है कृष्ण को संतुष्ट करने में, इंडिपेंडेंट भोक्ता नहीं है, इसलिए सेवा तो करनी पड़ेगी। केवल ऑप्शन इतना है, इंद्रियों की सेवा करो या कृष्ण की सेवा करो। इंद्रियों की सेवा करोगे तो जो इंद्रियां जो स्वामी है बड़ी खतरनाक स्वामी है, कभी संतुष्ट नहीं होंगे और आपका बुरा करेंगे, हमेशा आपको तकलीफ देंगे, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण हमारे हितैषी हैं। ये पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक यही है, जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो शांति का सूत्र है, क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति। ये तीन चीज यदि हम हृदयांगन कर लें, हृदय में उतार लें तीन चीज, तो परफेक्ट पीस, परफेक्ट हैप्पीनेस हमको मिलेगी। क्या क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी जो कार्य हमारे हैं उन सब के जो फलों का जो भोगने वाला अधिकारी है वो है श्री कृष्ण। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं हूं भोक्ता। कृष्ण इज डिक्लेयरिंग आई एम द एंजॉयर, नॉट यू, यू आर सर्वेंट, आई एम एंजॉयर। बट ही इज नॉट ए हिटलर टाइप ऑफ एंजॉयर मास्टर कि बस मैं भोग करूं और तुम सड़ो। कृष्ण वॉन्ट्स दैट वी शुड बी हैप्पी। तो जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में भगवान की सेवा करते हैं तब हम स्वाभाविक रूप से भगवान को संतुष्ट, ही मेक्स अस हैप्पी बाय रेसिप्रोकेशन। वो चाहते हैं कि हम सब सुखी रहें, इसलिए परम हितैषी भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के, सभी जितने भी संसार जो भी कुछ एग्जिस्टेंस में है सबके वो महाईश्वर, ही इज द स्वामी, ही इज द प्रोप्राइटर। तो इसलिए वो सबके भोक्ता है बिकॉज ही इज अ प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर होता है वही तो भोक्ता होता है। हम प्रोप्राइटर नहीं है इसलिए हम भोक्ता नहीं है, वो प्रोप्राइटर है इसलिए वो भोक्ता है। ये दो चीज। और तीसरी चीज सुहृदम सर्वभूताना, वही हमारे एकमात्र हितैषी है और कोई अपना हितैषी नहीं है। बड़ा मुश्किल लग सकता है सुनने में, ना तो हमारी पत्नी हमारी हितैषी है, ना तो हमारा पति, ना तो हमारे बच्चे, ना तो हमारे माता पिता, कोई हमारा हितैषी नहीं है यदि वो कृष्ण भक्त नहीं है। तो अगर कृष्ण भक्त हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं कृष्ण के, तो वो भक्त हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो कोई भी एक्स वाई जेड हो, वो हमारा हितैषी है। लेकिन अगर कृष्ण भक्त नहीं है तो भक्त हितैषी छोड़िए, शास्त्र के अनुसार तो उनको लुटेरे और चोर कहा गया है। इट मे बी पिंचिंग बट दैट इज फैक्ट, क्योंकि सब अपने इंद्रिय भोग के लिए हमारे अपने बनते हैं। अंत में सबका यही है कि हम सब, तुम हमारी सेवा करो, तुम हमारी, हमारे को संतुष्ट करो, सब स्वार्थ के लिए ही है। अल्टीमेटली केवल एकमात्र मित्र है तो वो श्री कृष्ण है और कोई नहीं। कोई अगर मित्र होने का होना चाहे भी तो भी क्या कर सकता है? जो खुद पानी में डूब रहा हो वो दूसरे को सांत्वना दे कि मैं तुम्हें बचाऊंगा तो क्या होगा? एक एरोप्लेन में एक पति पत्नी बैठे थे और अनाउंसमेंट होना शुरू हुआ कि भाई एरोप्लेन क्रैश होने वाला है, तो पत्नी जो है वो पति का हाथ पकड़ ली और पति भी उसको सांत्वना देने लगा, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी जब एरोप्लेन क्रैश होगा तो क्या कर लोगे तुम? तो हम क्या मदद किसी करेंगे? हम खुद तो डूबे हुए हैं, हम लोग क्या किसी को बचाएंगे? इसलिए बचा सकता है तो केवल एक कृष्ण। इसलिए अगर हमें किसी, हम किसी के हितैषी बनना चाहते हैं तो खुद भगवान की शरण लेनी चाहिए और दूसरे को भी भगवान की शरण में भेजना चाहिए, बस इतना ही हम कर सकते हैं। और वही भक्त करता है। भक्त का काम क्या होता है? भक्त खुद भगवान की शरण ग्रहण करता है, दूसरे को प्रचार करता है भाई कृष्ण की शरण में आओ, दैट्स इट। इसलिए वही सबका हितैषी है, वही सबका समाज सुधारक वही है। अगर हमें किसी को समाज को सुधारना है, समाज की मदद करनी है, तो एकमात्र मदद करने का तरीका है खुद कृष्ण भक्त बनो, सबको कृष्ण भक्त बनाओ, दैट्स इट, दैट्स द ओनली वे वी कैन हेल्प अदर्स। अपने बच्चों को हम मदद कर सकते हैं, बच्चों को कृष्ण भक्त बनाओ। अपने माता पिता को मदद कर सकते हैं, माता पिता को कृष्ण भक्त बनाओ, बस दैट्स द ओनली वे, इज नो अदर वे। इस प्रकार से भगवान अंत में निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अंतिम समय तक ये काम और क्रोध के वेग से बचा रहता है, कर्म फलों में आसक्त नहीं होता है, जो अंतःकरण में, जो भगवान की सेवा में ही आनंद लेता है, रमता है, वो इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाना उसका निश्चित हो जाता है। बड़ा इजी है स्पिरिचुअल लाइफ, कृष्ण की सेवा करें और जीवन पर्यंत कृष्ण की सेवा में रहें और अंत में कृष्ण का स्मरण करते हुए त्याग दें देह, तो भगवत धाम जाना निश्चित, दैट्स इट। जहां जाने के बाद यद गत्वान अनिवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर वापस भौतिक जीवन में नहीं आना। Actually, spiritual life is very simple, much simple than material life. Material life is always complicated, isn't it? आप लोग तो सब कार्य करते, कितनी complications है हर समय, पदम पदम यत विपदा, पद पद पे जहां विपदा ही विपदा है, आज ये प्रॉब्लम, आज ये प्रॉब्लम, आज यहां प्रॉब्लम. लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी सिंपल, टू स्टेटमेंट, टू थी स्टेटमेंट. जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो और दुख नहीं, वन स्टेटमेंट फिनिश्ड. जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर लेगा तो और दुख नहीं है, खत्म काम, ऑल कॉम्प्लिकेशंस ओवर. लेकिन यही विश्वास नहीं होता है, दैट्स इट, यही हमारी प्रॉब्लम है. जिस दिन ये विश्वास हो गया कि भाई हम तो कृष्ण दास हैं, इसलिए हमारा एक ही चिंता, एक ही काम है, कृष्ण की सेवा करो, दैट्स इट, बाकी सब कृष्ण देखेंगे अपने आप क्या करना है. ही नोज वॉट टू डू एंड जस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर ही गिव्स एज हिज मर्सी, दैट्स इट, फिनिश्ड. मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, आप मारो के राखो. एक बच्चा जो है जानता है कि मेरे माता पिता हमेशा मेरा हित ही चाहेंगे, तो जब वो उसको मना करते हैं, जब डांटते हैं, जब मारते हैं, तब भी वो जानता है कि मुझे मार रहे हैं तो मेरे हित के लिए मार रहे होंगे, इसमें कोई बिगड़ने की बात नहीं है. तो ऐसे ये भक्त जो जान लिया है, जो हृदय से रियलाइज कर लिया है कि कृष्ण मेरे हितैषी हैं, मैं अगर उनकी सेवा करूंगा तो अगर मुझे डांट भी पड़ेगी प्रकृति की, मार भी पड़ेगी, कुछ बुरा भी मेरे साथ होगा, तो वो उन्हीं की कुछ प्लानिंग होगी. ही वॉन्ट्स टू टीच मी सम लेसन, समथिंग, ऐसा ही कुछ होगा. एक राजा था तो शिकार करने के लिए गया, तो एक वहां पर आदिवासी लोग का एक ग्रुप था और उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसको बलि चढ़ाने लगे. उसका एक एक वो भी था, सेनापति भी था. व्हाट वाज द स्टोरी दैट तो अल्टीमेटली. लेकिन एक बात ध्यान रखने की ये है कि कई बार एक गीता सार हम देखते हैं, उसमें लिखा होता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा. तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि कैसे जो भी होता है वो अच्छा होता है. कि हम अगर कोई गलती कर रहे हैं तो हमें उसकी डांट पड़ रही है, तो उस डांट से हमको सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए. इस तरह से वो डांट पड़ना अच्छा हुआ, इस तरह से वो अच्छा हुआ. इस तरह से अच्छा नहीं कि वो डांट पड़ना अच्छा है या वो गलत काम करना अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं है. तो भगवान जो हमें कुछ कर्म के अनुसार पनिशमेंट दे रहे हैं वो अच्छा है, जिससे हम सीख सकें. तो यदि हम भगवद्गीता के अनुसार सीखना चाहते हैं तो वो अच्छा है. उसका मतलब ये नहीं जैसे जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, यानी कि जो भी हो रहा होने दो, बस जैसा भी चल रहा है चलने दो. उसका मतलब ये नहीं, भगवद्गीता ज्ञान ये नहीं, तो भगवद्गीता की जरूरत क्या है बताने की? जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, तो फिर भगवद्गीता की जरूरत क्या है? जो हो रहा है होने दो. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुआ अच्छा हुआ. अगर आप उससे लेसन ले सकें, सही प्रकार से उसको सही परिप्रेक्ष में देख सकें, भगवद्गीता के ज्ञान के आधार पर देख सकें, तब आप उससे सही शिक्षा ले सकेंगे और तब वो सही है आपके लिए. इस तरह से सही. तो इस प्रकार से भगवान हम सबके परम हितैषी हैं, परम मित्र हैं, ये यदि हम विश्वास कर लें तो आसानी से हम अपना जो भी कार्य करेंगे, सोच समझ के करेंगे, भगवान को पसंद है कि नहीं, और फिर चिंता मुक्त रहेंगे। अभी इसमें फिर जो भी होगा, हमने अपनी तरफ से भगवान की सेवा के लिए बेस्ट पॉसिबल प्रयास किया, अभी फिर अपने आप भगवान को पता है हमें कैसे टैकल करना है, क्या करना है, ही नोज बेटर देन मी, दैट्स इट, वी हैव टू बी फ्री, वॉट एवर ही डज इट्स इन माई बुक, दैट्स इट। तो इस प्रकार से अंत में भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम श्लोक बोल करके समाप्त करते हैं, यदि ये तीन चीज हम याद रखेंगे तो हम वास्तव में शांति प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार से पंचम अध्याय समाप्त हुआ, आज का हम क्लास यहां समाप्त करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। हाँ जी, एक्चुअली विश्वामित्र का उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, जब डिफ्रेंशिएट करते हैं हरिदास ठाकुर को विश्वामित्र से, तो लीला के अंदर कुछ हो सकता है कारण, जैसे अर्जुन यहां पर, अंततः तो अर्जुन कभी अज्ञानता में नहीं आ सकते, लेकिन इस समय जो लीला के अंतर्गत जो कार्य है, इस समय वो अपने कार्य से ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है तो वो कभी भी उसका पतन हो सकता है। तो विश्वामित्र जिस वो योग साधना, एटलीस्ट इन दिस लीला, वॉट एवर द ओरिजिनल कंडीशन दैट वी डोंट नो, और वी मे नो ही मे बी अ डिवोटी, बट एटलीस्ट इन नाउ इन दिस सिचुएशन ही इज मैनिफेस्ट, जैसे शिवजी, ब्रह्मा जी, तो वो सब अल्टीमेटली दे आर ऑल प्योर, लीला का पार्ट है, लेकिन एटलीस्ट नाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग कि क्या क्या होता है। तो कम से कम इस समय को उदाहरण से उन्होंने दिखाया कि कैसे वो घुंघरू की आवाज सुनकर कैसे उनका भस्म हो गया, तो हृदय के अंदर वो जो इच्छाएं थी वो प्रबलित हो गई। तो इस समय के उदाहरण से जरूर वो ऐसा दिखा रहे हैं, ऑफ कोर्स लीला के अंदर वो इतना डिफरेंट, यस 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 मे बी, या हाँ जी।
आपने बताया कि तो उन्हें कर्म का फल बंधन नहीं होता, तो ऐसा सुना है मैंने कि रामावतार में जो सुग्रीव के आपको बाली को मारा था, तो उसी हिसाब से कृष्णावतार में कृष्ण को ऐसे ही तीर की वजह से वो कर्म फल था कि क्या।
देखिए भगवान जब यहाँ आते हैं तो एक ड्रामा प्ले करते हैं, ड्रामा। अभी जो ड्रामे का राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर, तो वो जब ड्रामा लिखता है तो उसके अंदर सब कुछ जो सेटिंग होता है वो बहुत लॉजिकल होता है कि इसकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा, लेकिन अल्टीमेटली वो स्क्रिप्ट लिखने वाला है तो वो उस इट्स अ ड्रामा, वो उसके अंदर फंसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे भगवान कभी कभी कोई शाप ग्रहण करते हैं कि ठीक है मुझे ऐसा शाप लगा और इस प्रकार से ऐसा हुआ, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ हिज डिजायर, वो अपनी इच्छा से वो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बंधे हुए हैं। हम जो यहां पर हैं, हम इस प्रकार से लीला नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने अज्ञानतावश प्रकृति के नियम बंधे हुए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, हमारे जन्म कर्म दिव्य नहीं है, हम प्रकृति के नियम बंधे हुए हैं। इसलिए भले ही लीला के अंतर्गत वो कारण हो, लेकिन अल्टीमेटली इज फ्री, क्योंकि वो खुद लिखने वाले हैं स्क्रिप्ट, वो खुद इस लीला के, जैसे वो जब उनको बाण लगा तो भगवान उसको सांत्वना दिए, चिंता मत करो ये मेरी योजना है इस प्रकार से होगा। तो ड्रामे को एंड करने के लिए, लीला को एंड करने के लिए कृष्ण मेक सम प्लानिंग। सो लेकिन भगवान को बंधन, भगवान खुद प्रकृति के स्वामी हैं, बंधन कैसे होगा, वो खुद इस माया के स्वामी है ना, तो वो उससे कैसे बन सकते हैं। नमाम कर्माणि लिम्बन्ति। यस,
कहते हैं कि मैं तीनों लोकों में अगर ये कार्य ना करूं, नामे पार्था से करता हूं, कि अगर मैं तीनों ये कर्म ना करूं तो तीनों लोगों का उसके स्तर पे बोलते हैं कि मैं उनकी सत्ता बड़ा सुंदर बनाने का पूरा सृष्टि का विनाश करने का कारण हूं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कर्म करने के लिए मजबूर है, भगवान कभी भी किसी चीज के लिए बाध्य नहीं है, वो
स्वेच्छा से
तो। लेकिन भगवत गीता में खुद कहते हैं कि मैं तीनों लोगों में कार्य ना करूं तो ऐसा हो, लेकिन कार्य करते हैं, आते हैं किसके लिए, हमको दिखाने के लिए कि हम लोग उसको फॉलो करो। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं जो जैसा उदाहरण पेश करते हैं, देखिए हम लोग कैसे फॉलो करते हैं।